पृष्ठ संख्या 333, हिंदी एवं फारसी सूफी काव्यों के कुछ अभिप्रायों का सर्वेक्षण। क, अब हम सर्वप्रथम उन विशिष्ट कथानक रूढ़ियों का विवेचन करेंगे जो हिंदी तथा फारसी दोनों सूफी काव्यों में उपलब्ध होती है। पृष्ठ संख्या 334। ख, तत्पश्चात उन कथानक रूढ़ियों का उल्लेख करेंगे जो केवल हिंदी सूफी काव्य की व्यक्तिगत रूढ़ियां हैं और वे फारसी सूफी काव्य में नहीं मिलती, यथा सिंघल दीप, समुद्र यात्रा, तूफान, जलयान ध्वंस, पार्वती महादेव, शिव मंदिर, जल क्रीड़ा अथवा मानसरोवर, बारह मासा आदि। डॉक्टर शिव सहाय पाठक का कथन है कि फारसी साहित्य में प्रेम संबंध घटक पंक्षी, मानसरोवर, बारह मासा, समुद्र यात्रा, तूफान, जलयान ध्वंस, शिव मंदिर, शंकर पार्वती प्रभृति अनेक रूढ़ियां नहीं मिलती। डॉक्टर शिव सहाय पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर, सन 1964, पृष्ठ 191-92। परंतु हमने अगले पृष्ठों में पक्षी संबंधी रूढ़ी के विवरण में सिद्ध किया है कि फारसी सूफी काव्य में प्रेम संबंध संगठक के रूप में हुदहुद पक्षी को व्यवहित किया गया है। ग, अंत में उन अत्यंत प्रचलित कथानक रूढ़ियों की चर्चा है जो केवल फारसी अदब ही का सरमाया है। क, पशु पक्षी। निस्संदेह भारतीय वाङ्मय में जितना पशु पक्षियों को स्थान मिला है उतना अन्य किसी देश में नहीं। कहानी के पात्रों के रूप में इनका उपयोग किया गया है और अनेक उपदेशों को हृदयंगम कराया गया है। पशु पक्षियों से संबंधित अनेकानेक कहानियाँ फारसी, अरबी तथा यूरोप की अन्य भाषाओं में चली गई हैं। हिंदी तथा फारसी सूफी काव्यों में पशु पक्षी अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं जो विशेष कार्यों का संपादन करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। विशेषतः मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी में पशुओं द्वारा आध्यात्मिक जगत के रहस्यों पर प्रकाश डाला है। ऐसी कथाओं को पढ़कर कुछ छिद्रान्वेषियों ने आक्षेप किया कि मसनवी में केवल बच्चों की कहानियां हैं। पृष्ठ संख्या 335। जुमला सरता सरफसाना अस्तो फुसू उदकाना किस्सा बरुनो दरू। मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1947 ईस्वी तृतीय भाग पृष्ठ 289। अर्थात मसनवी में सर्वथा कथा कहानियां हैं, इसमें बच्चों के किस्से ही किस्से हैं। मौलाना रूम ने उक्त कथन का खंडन करते हुए प्रायः 20 शेर कहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जब कुरान आया था तो उस समय भी काफिरों ने उस पर ताने मारे थे, आक्षेप किए थे, उसे बच्चों का कहानियों का संग्रह कहा था। चूँ किताबे अल्लाह बयामद हम बरा ई चुनी ताना जदंद आ काफिरा की असा तिरस्तो अफसाना नजंद नीस्त तमिके ओ तहकीके बलंद कूद काने खुर्द फहमश भी कुनंद नीस्त जुज अमुरे पसंदो ना पसंद। मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1947 ईस्वी तृतीय भाग पृष्ठ 289। अर्थात जब कुरान प्रकट हुआ तो उस समय काफिर उस पर आवाजें कसते थे कि इसमें तुच्छ किस्से और निरर्थक कहानियां हैं, थोथी बातें हैं और कोई गंभीर तथा रहस्यपूर्ण भाव एवं विचार नहीं, इन्हें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बातें उन्होंने की और फप्तियाँ उड़ाईं, परंतु हरफे कुरान रा मदा की जाहिरस्त जेरे जाहिर बातिने हम काहिरस्त वही पृष्ठ 290। अर्थात कुरान के कथनों को यह न समझ कि वे निसत्व हैं अपितु इनमें अनेकानेक गूढ़ अर्थ निहित हैं। पृष्ठ संख्या 336। इस प्रकार मसनवी में वर्णित पशु विषयक कथाएं निस्सार एवं निष्प्रयोजन नहीं हैं। इन कथाओं के द्वारा अनेक रहस्यों का उद्घाटन हुआ है और जीव जंतुओं के मुँह से मनुष्यों को सदाचार और साधना मार्ग के गूढ़ से गूढ़ सिद्धांतों को समझाया गया है। मौलाना रूम लिखते हैं, खुशतर आ बाशत की सिर्रे दिलबरा गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगरा। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ 1947 प्रथम भाग पृष्ठ 18। अर्थात अच्छा यह है कि प्रियतम का मर्म दूसरों की कथाओं के माध्यम से कहा जाए, यानी जीव जंतुओं की कथाओं के माध्यम से गुह्य रहस्यों के द्वार उन्मुक्त करना उत्तम है। फारसी सूफी काव्य में पशुओं में से शेर, हाथी, अजगर, लोमड़ी, सियार आदि को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। वस्तुतः हाथी और अजगर की कथानक रूढ़ी फारसी साहित्य की है। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना, सन 1960, पृष्ठ 255। हाथी। फारसी साहित्य के सुप्रसिद्ध सूफी कवि हकीम सनाई ने अपनी विख्यात मसनवी हदीका, इस मसनवी का पूरा नाम हदीकतुल हकीकत है, में हाथी के द्वारा यह बताने की चेष्टा की है कि मनुष्य के लिए ईश्वर को जानना सहज नहीं। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। गौर देश में एक बहुत बड़ा नगर था। वहाँ के निवासी अंधे थे। एक बादशाह अपनी अगणित सेना सहित वहाँ विश्रामार्थ ठहरा। उस बादशाह के पास एक हाथी भी था। उसे वह युद्ध में आतंक फैलाने और शत्रु की सेना पर आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त करता था। नगरवासियों में हाथी की जानकारी प्राप्त करने की उत्कट जिज्ञासा हुई। कुछ अंधे देखते देखते पृष्ठ संख्या 337 वहां पहुंच गए ताकि हाथी के रूप आदि का अनुमान कर सकें। उन नेत्रहीनों ने अपने हाथों द्वारा उसे टटोलना आरंभ कर दिया। उन्होंने हाथी के किसी न किसी अंग का स्पर्श किया और कुछ न कुछ अनुमान लगा लिया। जब वे नगर को लौटे तो अन्य लोग हाथी के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। जिसका हाथ कान पर पड़ा उसने कहा कि वह कालीन की भांति एक बड़ी और सख्त वस्तु है। जिसका हाथ सूंड पर पड़ा उसने बताया कि वह बड़े नल की भांति खोखला और सीधा सा पदार्थ है। जिसका हाथ हाथी की टांग पर पड़ा उसने कहा कि वह तो एक बहुत बड़े स्तंभ के समान है। उनमें से प्रत्येक ने हाथी का केवल एक ही अंग टटोला था, अतएव वे हाथी को पूर्ण रूपेण जानने में असमर्थ थे। इसी प्रकार साधारण पुरुष भी परमात्मा को नहीं जान सकता। कवि सनाई के शब्दों में, हेच दिल राजे कुली आगह न, इल्म बा हेच कोर हमरह न। हदीका ए सनाई, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 41। अर्थात कोई भी साधारण हृदय दिव्य रहस्यों से परिचित नहीं है। ज्ञान चक्षु से रहित अंधे को आध्यात्मिक ज्ञान का पता नहीं चल सकता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी में दृष्टांत स्वरूप हाथी विषयक कथा मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, तृतीय भाग, पृष्ठ 86 को इस प्रकार लिखा है। किसी देश में कुछ हिंदू एक हाथी को दिखाने के लिए लाए। उसे बिल्कुल अंधेरे मकान में बांध दिया। लोग बारी बारी से आते थे और अंधेरे घर में प्रविष्ट होते थे। वहाँ कुछ भी साफ दृष्टिगोचर न होता था, अतएव प्रत्येक प्राणी उसको हाथ से टटोलता था। जिसका हाथ सूंड पर पड़ा उसने कहा कि उसका शरीर पर नाले जैसा है। जिसका हाथ कान पर पड़ा उसने जाना कि वह पंखे के सदृश है। जिसका हाथ पीठ पर पड़ा, पृष्ठ संख्या 338, उसने कहा कि हाथी सिंहासन के समान है। और जिसका हाथ उसके पांव पर पड़ा उसने कहा कि वह स्तंभ की नाई है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष ने विचारा कि बस हाथी वैसा ही है जैसा कि उसने टटोला है। हरेक की टटोल जुदा जुदा थी, अतः किसी ने क कहा और किसी ने ख। यदि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दीपक होता तो अनेकता मिट जाती। फिर मौलाना रूम लिखते हैं कि नदी का पाट और है और नदी का फेन दूसरा पदार्थ। तुझे चाहिए कि फेन से दृष्टि हटाए और नदी को देखे, अंशी को देखे, अंश को नहीं। चश्मे दर्या दिगरस्तो कफ दीगर, कफ बहिलो जे दीदा दर दर्या निगर, जुम्बिशे कफहा जे दर्या रोजो शब, कफ हमें बीनी ओ दर्या ने अजब। मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, तृतीय भाग, पृष्ठ 86। अर्थात चश्मे आँख, दर्या और है, झाग और है। छोड़ झाग और देख दर्या आँख से, रात दिन दर्या से है गति झाग को। झाग को तू देख न दर्या को तू। जायसी कृत अखरावट में भी हाथी संबंधी कथा की ओर संकेत है। सुनी हस्ती कर नाव, अधरन टोवा धाई कै, जेई टोवा जही ठाव, मुहम्मद सो तैसे कहा। जायसी ग्रंथावली अखरावट, पृष्ठ 320। आचार्य शुक्ल ने इस विषय में टिप्पणी दी है कि चार अंधे यह देखने के लिए कि हाथी कैसा होता है हाथी को टटोलने लगे। जिसने पूंछ टटोली वह कहने लगा रस्सी के ऐसा होता है। जिसने पैर टटोला वह कहने लगा कि खंभे के जैसा होता है। इसी प्रकार जिसने जो अंग टटोला वह उसी के अनुसार हाथी का स्वरूप कहने लगा। यही दशा पृष्ठ संख्या 339 ईश्वर और जगत के संबंध में लोगों के ज्ञान की है। एकांग दस्यन का यह दृष्टांत पहले भगवान बुद्ध ने देकर समझाया था। वही पृष्ठ 320 पाद टिप्पणी। अजगर। इसी प्रकार फारसी काव्य में पात्र के रूप में अजहदा अजगर का उपयोग भी एक प्रकार की कथानक रूढ़ी है। फिरदौसी कृत फारसी वांग्मय के प्रथम पूर्ण महाकाव्य शाहनामा 2 में इस कथानक रूढ़ी के भी दर्शन होते हैं। शाहनामा में वर्णित है कि कैकुबाद के अनंतर कैकाउस 3 ईरान के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। रुस्तम उसका सेनापति था। एक बार कैकाउस ने राग रंग की सभा जमाई हुई थी। एक देव गायक के रूप में आया और माजंदरान नामक देश की प्रशंसा में मीठे मीठे गीत गाए। उन्हें सुनकर कैकाउस के चित्त में माजंदरास पर अधिकार जमाने का शौक चुटकियां लेने लगा। रुस्तम के पिता जाल ने बहुतेरा कहा कि माजंदरान में जान खतरा को मोल लेना है, परंतु बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी और ईरान के राज्य को जाल एवं रुस्तम की देखरेख में छोड़कर आप माजंदरान की ओर रवाना हो गया। माजंदरान के शासक ने देवों के बादशाह को सहायता के लिए बुलाया। देवों ने चमत्कार दिखाकर आंधी और वर्षा से कैकाउस की बहुत सी सेना को ठिकाने लगा दिया या अंधा कर दिया। हजारों देवों ने कैकाउस एवं उसकी सेना को बंदी बना लिया। इन बंदियों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए और उन्हें भरपेट खाना भी न दिया गया। 2. कवि दकी की मृत्यु सन 975 ईस्वी ने फारसी में महाकाव्य शाहनामा लिखने का श्री गणेश किया था, परंतु उसने केवल 1000 शेर ही लिखे थे जब उसके एक गुलाम ने उसकी हत्या कर दी। फिरदौसी ने शाहनामा को पूर्ण किया। 3. यह बादशाह अत्यंत भ्रमी मूर्ख एवं कायर था। वस्तुतः उसका राज्यकाल रुस्तम की अमित वीरता की धूम के कारण स्मरणीय है। रुस्तम लाहौर मौलवी फिरोजुद्दीन प्रकाशक पृष्ठ 59। तंग आकर कैकाउस ने पृष्ठ संख्या 340 एक संदेशवाहक सहायतार्थ जाल के पास भेजा। चूंकि जाल वयोवृद्ध हो चुका था, अतएव उसने रुस्तम को आपदग्रस्त बादशाह की सहायता के लिए भेजा। ईरान से माजंदरान तक सामान्य मार्ग से तो कई सप्ताहों की यात्रा थी, परंतु रुस्तम इस विचार से कि कहीं माजंदरान के लोग अधिक समय मिलने से बादशाह की हत्या न कर दें, उसने निकटतम मार्ग से प्रस्थान किया। वह छोटा रास्ता नाना प्रकार की आपदाओं से परिपूर्ण था। वह 7 दिन में 7 मंजिलें पार करके माजंदरान पहुंच जाना चाहता था। भयानक मार्गों एवं घने वनों में से गुजरकर जब उसने पहली मंजिल तय की तो वह सो गया। एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसके घोड़े रक्ष ने शेर का काम तमाम कर दिया। दूसरे दिन रुस्तम फिर रवाना हुआ। मार्ग अत्यंत भीहड़ था और पानी का कहीं नाम तक न था। रुस्तम सारा दिन प्यासा ही यात्रा करता रहा, किंतु सायंकाल प्यास से उसका दम उखड़ने लगा। वह सर्वथा निढाल हो गया, परंतु विपन्न रुस्तम के घोड़े ने साहस से काम लिया और दम भर में उसे एक सोते के पास पहुंचा दिया। वहां उसने पानी पिया और उसकी जान में जान आई। तीसरी मंजिल में उसका सामना एक ऐसे अजदहा से हुआ जिससे हाथी भी नहीं बच सकता था। 1. घटना इस प्रकार है कि आधी रात गए एक अजगर सोते हुए रुस्तम की ओर बढ़ा, जिसे देखकर घोड़ा व्याकुल हो गया। उसने भूमि पर अपने कांसी के सुमो को मारा और कड़कती हुई बिजली की भांति शोर किया। रुस्तम तुरंत जाग उठा और अजगर के साथ दो दो हाथ करने का निश्चय किया। उसने विद्युत वेग से अपनी तलवार को नियाम में से खींचा और बादल की भांति गर्जन तर्जन किया। अजगर हाथी 2-1 जे दस्त अंदर आमद यके अजदहा कजू पील गुफ्ती नयाबद रहा। शाहनामा तेहरान जिल्द 2 पृष्ठ 339। अर्थात जंगल से एक अजगर आया जिससे हाथी भी नहीं बच सकता था। 2. बदा सा बया वेक्स वा पीलतन तु गुफ्ती बर उसम दरामद शिकन। शाहनामा तेहरान पृष्ठ 341। अर्थात उस हाथी का सा शरीर रखने वाले रुस्तम के साथ वह अजगर इस तरह लिपट गया जिससे कि रुस्तम की पराजय होने लगी। सा पृष्ठ संख्या 341 शरीर रखने वाले रुस्तम के साथ पूर्ण रूपेण लिपट गया जिससे उसको जान के लाले पड़ गए। रक्ष ने यह देखकर कानों को खड़ा किया और वेग से आगे बढ़ा। उसने दांतों से अजगहा को काटा और घायल किया, फिर अजगर के चमड़े को इस तरह फाड़ डाला जैसे कि वह कोई शेर हो। यह देखकर रुस्तम चकित रह गया। उसने तलवार से उस पर वार किया और उसके सिर को धड़ से जुदा कर दिया। उसकी देह से रक्त का सोता फूट पड़ा। चौथी मंजिल में रुस्तम ने एक जादूगरनी को मौत की नींद सुलाया। पांचवी मंजिल में उसने एक औलाद नामक पहलवान का काम तमाम किया। छठी मंजिल में उसने अर्जंग नामक देव का सफाया किया। सातवीं मंजिल में उसने सफेद देव को ठिकाने लगाया। इन सात मंजिलों को फिरदौसी ने हफ्त ख्वाने रुस्तम रुस्तम के चुने हुए खानों के साथ स्थल लिखा है, क्योंकि वह प्रत्येक मंजिल से गुजरने के पश्चात कृतज्ञता के रूप में दस्तरखान बिछाता था। फारसी सूफी काव्य में भी अजगर की कथानक रूढ़ी व्यवहृत हुई है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसे नफ्स वासना पूर्ण आत्मपक्ष का प्रतीक मानते हुए निम्न कथा दी है। कहते हैं कि एक सपेरा पर्वत पर सांप पकड़ने गया। उसने एक बहुत बड़ा मृतवत अजगर देखा। अजगर क्या था? पूरा स्तंभ का स्तंभ था। उसे बांध कर खींचता हुआ वह बगदाद नगर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने घोषणा की, एक मुर्दा अजदहा लाया हूं। इसके शिकार में मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह तो उसे मरा हुआ समझता था, परंतु यथार्थतः अजदहा जीवित था। वह सर्दी और हिमपात के कारण ठिठुर गया था। सारे नगर में समाचार फैल गया कि एक सपेरा एक अजगर लाया है जो अद्भुत है। वैसा आज तक किसी ने नहीं देखा। सहस्त्रों पृष्ठ संख्या 342। दर्शक एकत्रित हो गए। इस पर भी सपेरा प्रतीक्षा करता रहा ताकि अधिक लोग इकट्ठे हो जाएं। जितने ज्यादा दर्शक होंगे उतनी ही अधिक आय होगी। थोड़ी देर के पश्चात वहां इतनी भीड़ लग गई कि तिल धरने की जगह न रही। सहसा अजगर ने मुंह खोला, फिर तो दर्शकों का मारे भय के मुंह खुला का खुला रह गया। अजगर रस्सियों में बंधा हुआ था। एक ओर लोगों ने गुलगपाड़ा मचाया, दूसरी ओर सूर्य चमका। इस ताप से जो वह सिका तो उसके जोड़ बंद खुल गए और वह रेंगने लगा। यह देखकर लोगों में एकदम चीख मधाड़ और भगदड़ मच गई। उसने सारी रस्सियां तोड़ डाली और घोर सरसराहट का शब्द हुआ। चारों ओर घूमने लगा। वह बिल्कुल काबू से बाहर हो गया और शेर की भांति गुर्राया। इस भागड़ में अनेक बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध पुरुष कुचले गए और बहुत से लोग दम तोड़ गए। उधर मारे भय के सपेरे के हाथ पैर फूल गए। काटो तो बदन में लहू नहीं, उसने अपने जी में कहा। हाय, मैं यह क्या उठा लाया। इस अंधे भेड़िये को मैंने होशियार कर दिया और अपने हाथों अपनी मौत बुलाई। इतने में अजगर ने एक स्तंभ से अपने को लपेटा और फिर ऐसा बल खाया कि उस सपेरे की अस्थियां तक चूर चूर हो गईं। अंत में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने समझाया है कि नफ्स भी एक अजगर है। यह कभी भी मुर्दा नहीं होता है, बल्कि वह सदा अवसर की ताक में रहता है और अवसर पाते ही गुल खिलाता है। नफ्सत अजदहास्त ऊके मुर्दा अस्त अजगमे व आलती अफसुरदा अस्त। अर्थात तेरा नफ्स अजगर है, वह कब मुर्दा है, परंतु बुभुक्षा के कारण ठिठुरा हुआ है। हिंदी सूफी काव्य में कवि कुतुबन कृत मृगावती में नायक को भयंकर सर्पों के दर्शन होते हैं। समुद्र में लहर आ जाने के कारण नाव संकट ग्रस्त पृष्ठ संख्या 343 हो जाती है। फिर भयानक सर्प दिखाई पड़ता है तो राजकुमार ईश्वर से प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। उसी समय दूसरा सर्प भी दिखाई पड़ता है, वे आपस में लड़कर मर जाते हैं। कुतुबन कृत मृगावती प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 94। कवि उस्मान कृत चित्रावली में अजगर एवं हाथी का उल्लेख हुआ है। कुटीचर द्वारा अंधा होकर राजकुमार सुजान जंगल में अकेला भटकता है और सगुण भक्तों के समान ईश्वर का स्मरण करता है। हेर गोसाई आप कह मोरे कांजनी हेरू, आपन नाव दयाल गुनी हो दयाल एहि बेरू। उस्मान चित्रावली नागरी प्रचारणी सभा काशी 1912 ईस्वी पृष्ठ 115। इसके पश्चात एक अजगर सुजान को लीलता है, परंतु इसकी विरहाग्नि से अजगर का उदर जलने लगता है। उद्विग्न होकर वह उसे उगल देता है। वन में रहने वाला एक वन मानुष यह दृश्य देखता है। उसे राजकुमार पर दया आती है और वह एक अंजन देता है, जिसे लगाने से राजकुमार की नेत्र ज्योति पुनः पूर्ववत हो जाती है। राजकुमार सुजान फिर वन से इधर उधर भटकने लगता है। दो चार पक्ष इस प्रकार उसे भटकते हो जाते हैं। तत्पश्चात उसे एक मत्त हाथी सूंड में पकड़कर मार डालना चाहता है। उसका जीवन समाप्त होने ही वाला होता है जब एक पक्षीराज आकर हाथी को लेकर उड़ जाता है। हाथी घबराहट के मारे राजकुमार को छोड़ देता है और वह एक समुद्र तट पर जा गिरता है। सियार, लोमड़ी, गधा आदि। भारतीय कथा साहित्य की यह एक प्रमुख प्राचीन कथानक रूढ़ी है कि सियार या लोमड़ी को चतुर और गधे को मूर्ख कहा जाता है। फारसी साहित्य में उपर्युक्त पशुओं के रूप कई स्थानों में प्रकट हुए हैं। फारसी सूफी काव्य में भी यह रूढ़ी व्यवहृत हुई है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने निम्न कहानी में लोमड़ी की चतुरता एवं धूर्तता और गधे की मूर्खता पृष्ठ संख्या 344 का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। इस कथा पर पंचतंत्र का प्रभाव स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होता है। एक धोबी का गधा था। उसकी पीठ हत आहत, पेट खाली और शरीर हड्डियों का ढांचा था। वह चटियल पर्वत पर दिन काटता था जहां पानी के अतिरिक्त कुछ न था। उस पर्वत से थोड़ी दूर ही एक घना वन था। इसमें एक शेर शिकार किया करता था। सहसा शेर की जंगली हाथी से मुठभेड़ हो गई। शेर घायल हो गया और घायल भी ऐसा हुआ कि शिकार करने के भी समर्थ न रहा। जब शेर को कुछ दिनों तक शिकार न मिला तो दूसरे छोटे जीव जंतु भी आहार से वंचित हो गए, क्योंकि शेर का अवशिष्ट भोजन उन्हीं को उपलब्ध होता था। शेर के अस्वस्थ होने से उनके नाक में भी दम आ गया और वे भूखे मरने लगे। शेर ने एक लोमड़ी को बुलाकर कहा, जा और मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ। यदि तुझे वन में कोई गधा मिल जाए तो बातों में लगाकर उसे यहाँ तक ले आ। अब अविलंब अपनी चालाकियों का जाल बिछा। जब इस शिकार के मांस में मुझमें कुछ दम आ जाएगा तो उसके उपरांत कोई अच्छा शिकार करूंगा। थोड़ा समय खाऊंगा, शेष तुम्हें दे दूंगा। लोमड़ी ने उत्तर दिया कि मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसे उतार चढ़ाव बताऊंगी कि बुद्धि चक्कर में आ जाएगी। गुफ्त रोबह शेर रा खिदमत कुनम, हील हास आजम जे अकलश बर कुनम, हीला ओ अफसू निगारी कारे मनस्त, कारे मन दस्तानो अजरह बुरदनस्त। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पंचम भाग, पृष्ठ 163, पृष्ठ संख्या 345। अर्थात बोली रोबह शेर एक की खिदमत करूं, हीला दो करके अकल उसकी फेर दूं। हीला धोखा करना मेरा काम है, मकर से बहकाना मेरा काम है। लोमड़ी पर्वत पर से नदी की ओर जा रही थी कि उस दुर्बल गधे पर दृष्टि पड़ी। वह उसके पास गई और कहा, आप ऐसे शुष्क पर्वत पर क्यों रहते हैं? यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं। गधे ने उत्तर दिया, चाहे दुख हो चाहे दर्द, ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही बदा है और मैं इस पर संतुष्ट हूँ। मैं बांटने वाले की बाँट पर प्रसन्न हूँ। वह सब जीव जंतुओं को भोजन देता है, पक्षी आदि भी उसके दिए हुए आहार से पेट भरते हैं। लोमड़ी बोली, इस संसार में बिना प्रयास एवं प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। यदि आप किसी कुएं में जा बैठे तो जीविका आप तक कैसे पहुंचेगी? गधे ने कहा, यह हमारे तवक्कुल ईश्वरीय विश्वास की कमी है, अन्यथा जिसने जान दी है वही नान तीन भी देगा। अंततः लोमड़ी ने अपने तर्कों एवं चिकनी चुपड़ी बातों से गधे को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। वन की हरी भरी घास की प्रशंसा के पुल बांधकर लोमड़ी ने आकाश पाताल एक कर दिया। गधे को दृढ़ विश्वास हो गया कि उस वन और इस चटियल पर्वत में आकाश पाताल का अंतर है। गधे ने गधेपन से यह भी न पूछा कि हे मूर्ख, जब तू उस वन की रहने वाली है तो इतनी दुर्बल क्यों है? तू मोटी ताजी क्यों नहीं है? सूख कर काटा क्यों हो गई है? जब तू चश्मे से चली आ रही है तो प्यासी क्यों है? एक लोमड़ी, दो बहाना, तीन रोटी, पृष्ठ संख्या 346। अंततो गत्वा गधा घास खाने के लोभ में धोखा खा गया। वह सब तर्क शास्त्र भूल गया और लोमड़ी के पीछे पीछे हो लिया। शेर ने दूर से देखा कि लोमड़ी एक गधे को अपनी बातों में फुसलाए हुए चली आ रही है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह गधे के पास आने की प्रतीक्षा न कर सका, दूर ही से तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया। शेर में शक्ति तो नाम मात्र भी न रही थी, वह केवल थोड़ा सा उछला और उछल कर रह गया। गधा भय खाकर तुरंत उल्टे पांव जान लेकर भागा और अपने पर्वत पर जाकर दम लिया। लोमड़ी ने शेर से कहा, हे अन्नदाता, आपने मौका हाथ से खो दिया, तनिक भी धैर्य से काम न लिया। आपने इतनी प्रतीक्षा भी न की कि वह मूर्ख आपके मुंह के पास पहुंच जाए। जल्दी और तेजी शैतान का काम है और धैर्य ईश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि वह अभी आपकी पहुंच से बाहर था, इसलिए आपको आक्रांता देखकर 9:02:11 हो गया। किसी का क्या गया, आप ही की निर्बलता प्रकट हुई और सम्मान धूल में मिल गया। शेर ने दैन्य वाणी में कहा, मैं यह समझता था कि अभी मुझ में कुछ शक्ति शेष है, परंतु मेरा यह अनुमान ठीक नहीं निकला और मैं और तीर निशाने से चूक गया। मारे भूख मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए मेरी बुद्धि मुझे जवाब दे गई, यदि संभव हो सके तो पुनः अपनी बुद्धिमत्ता एवं चतुरता से उसे यहाँ ले आ। उठ और यत्न कर, शायद गया हुआ शिकार फिर हाथ आ जाए। लोमड़ी ने शेर को ढाढ़स बताते हुए कहा कि आप चिंता न कीजिए, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं गधे को फिर पास कर यहाँ लाने में कोई कसर उठा न रखूंगी, शायद वह उस भय को भूल जाए जिसे वह अनुभव कर चुका है, परंतु जब मैं उसे आपके पास दूसरी बार लाऊं तो उतावली से काम न लीजिए ताकि बना बनाया खेल पुनः न बिगड़ जाए। शेर ने कहा कि इस बार मैं चुपचाप बैठूंगा, जब तक गधा बिल्कुल मेरे पास न आ जाए मैं कान तक न हिलाऊंगा और दम साधे रहूंगा। पृष्ठ संख्या 347। तदनंतर लोमड़ी गधे के पास पहुंची, उसे देखकर गधा क्रोध के मारे लाल पीला हो गया और बोला, अरे निर्लज्ज, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे रक्त पाई शेर के पास ले गई। तू तो विषैले बिच्छू के समान है जो बिना छेड़े और सताए भी पांव पर डंक मारता है, तूने निश्चय ही मित्र द्रोह किया है। लोमड़ी ने कहा, भाई क्या बहकी बहकी बातें करते हो, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया, वहां कोई शेर नहीं था। यह तो आपका भ्रम है जो आप यह समझ रहे हैं कि मैंने आपको शेर के पास जा पहुंचाया। भला विचारो तो सही कि क्या आप शेर से बच सकते थे और क्या शेर आपको छोड़ सकता था, कदापि नहीं। वह स्थान तो बड़ा रमणीक है, वहां सब प्रकार के जीव जंतु सुरक्षित घूमते फिरते हैं। मैं काया में आपसे कहीं छोटी हूँ और रात दिन वहीं रहा करती हूँ। इस प्रकार की कई बातें बनाकर वह गधे को बातों में लाने लगी। उसने वन की घास की बात कई बार चलाई। गधा भूख से अत्यधिक व्याकुल था, अतः पुनः हरी भरी घास के लोभ का शिकार हो गया और लोमड़ी की बात बन गई। लोमड़ी गधे को इस प्रकार बहका फुसलाकर फिर शेर के सामने ले गई। शेर ने इस बार धैर्य के आंचल को न छोड़ा और चुपचाप पड़ा रहा। जब गधा शेर के मुख के निकट पहुंच गया तो उसने चीर फाड़ कर गधे को बराबर कर दिया। इस शिकार खेलने के श्रम से क्लांत होकर शेर एक चश्मे पर पानी पीने चला गया। लोमड़ी ने अवसर को चुकने न दिया और देखते ही देखते मृत गधे का दिल और जिगर खा लिया। शेर ने चश्मे से लौटकर जो देखा तो न दिल था न जिगर। लोमड़ी से पूछा कि उसका दिल और जिगर कहाँ गए, क्योंकि कोई भी जीव इन दोनों से रहित नहीं होता। लोमड़ी ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज यदि उसके दिल और जिगर होते तो वह दूसरी बार यहाँ कैसे आता। अंत में मौलाना रूम ने लिखा है कि जिस दिल में नूर न हो वह दिल ही नहीं और जिसमें आत्मा न हो वह सर्वथा मिट्टी है। पृष्ठ संख्या 348। चून अदारद नूर दिल, दिल नीस्त आ, चून बाशद रूह जुज कुल नीस्त आ। मसनवी ए मौलवी ए मानवी पैराहने यूसुफी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पंचम भाग पृष्ठ 203। अर्थात जो हृदय ज्योति से रहित हो वह हृदय नहीं है और यदि आत्मा न हो तो वह शरीर अंश है अंशी नहीं। हिंदी सूफी काव्य में गीदड़ लोमड़ी आदि का उल्लेख नहीं हुआ है।